नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना, 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी, मृतकों की संख्या 920 हुई। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर फिर हमले किए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और महासागर दृष्टिकोण तथा विकासशील देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार बताया है। 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने कहा कि सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत बनाने तथा हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। विश्व दर्पण के लिए मृगनयनी पांडे।
परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन होने पर इसके गंभीर परिणामों का पता चलेगा। इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि अमरीका के हवाई हमलों के जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल-फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि ईरान माकूल जवाब देने के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्लाह को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इस शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह के दौरान 963 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 672 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये वृद्धि मुख्य रूप से सोने के भंडार में वृद्धि होने से आई है। भारत में सोने का भंडार 4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 107 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर रहा। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बायना ने स्पेन के लिए विजयी गोल दागा। ग्रुप एच के अन्य मुकाबले में काबो वेर्दे सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर अगले राउंड में पहुंच गया। इससे पहले ग्रुप आई में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर रहा। नॉर्वे 6 अंक के साथ अगले राउंड में पहुंच गया। सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, युवराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से कल मुलाकात की। श्री प्रधान ने बताया कि चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना, 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी। मृतकों की संख्या 920 हुई। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर फिर हमले किए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।